भाई, आज तो आपको आराम से सोना चाहिए था और भाभी के हसीन ख्वाब देखने चाहिए थे, पर आप तो सुबह सुबह ही उठकर बैठ गए। लगता है भाभी के पास जाने को बड़े बेताब हैं आप। तभी रात को ठीक से नींद नहीं आई और मुर्गे जैसे सुबह की पहली किरण पर ही उठकर बैठ गए। बेचारा अक्षय फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकला ही था कि शैतान अन्वय ने उसे छेड़ दिया। टॉवल से अपने भीगे चेहरे को पोंछते हुए अक्षय ने तिरछी नजरों से पल भर उसे घूरा, फिर बालकनी की ओर बढ़ते हुए बोला, सुबह सुबह तुझे दिमाग खाने और परेशान करने के लिए कोई और नहीं मिला जो मुंह उठाकर मेरे कमरे में घुस आया है? अन्वय ने सवाल सुना और तुरंत ही बेफिक्री भरे अंदाज में जवाब दिया, नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। परेशान करने को तो बहुत से लोग हैं, पर आजकल मेरा सारा फोकस आप पर ही रहता है। मत किया कर इतना फोकस मुझ पर, इसके बजाय कुछ काम कर लिया कर, अक्षय ने खींचते हुए कहा और बालकनी में आकर भीगे टॉवल को सुखाने लगा। अन्वय भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया और नाराजगी भरी निगाहों से उसे घूरते हुए तुनकते हुए जवाब दिया, काम करने ही जा रहा हूँ भाई, मम्मी ने आपको बुलाने भेजा था, बस इसलिए यहाँ तक आया, और आप मुझे यूं ताने मारने लगे जैसे सारा दिन बेल्ला पड़ा आवारा गर्दी ही करता रहता हूँ। आपको क्या पता कि कितनी जिम्मेदारियां हैं मेरे कंधों पर? आप तो यहाँ कमरे में बंद रहते हैं और आपकी शादी का सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है। अन्वय ने बुरा सा मुंह बनाया और उसे बाहर आने का कहकर वापस चला गया। बारात को 10-11 बजे से पहले यहाँ से निकलना था ताकि 6-7 बजे तक कानपुर पहुँच सके, जहाँ उनके ठहरने का इंतजाम होटल में किया गया था। कुछ देर बारातियों के वहाँ रेस्ट करने और खाने पीने के बाद बारात को शुक्ला निवास के लिए कूच करना था। बस इसलिए सुबह से हड़बड़ी में बची रस्में निपटाई जा रही थी। बारात के निकलने की तैयारियां जारी थी और कामों में उलझी रूपाली जी को तो सांस लेने तक की भी फुर्सत नहीं थी। ऐसा ही कुछ हाल कानपुर में जयंती जी का भी था। बेटी की शादी थी, 100 काम फैले थे, रस्में बाकी थीं, तैयारियां रहती थीं, मन में बसा भय कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, कुछ छूट ना जाए, उन्हें एक पल भी चैन से बैठने नहीं दे रहा था। पल्लवी कभी उनके साथ काम में हाथ बटाती तो कभी आहाना के कमरे की ओर दौड़ लगाती। रस्मों के बीच आहाना के साथ जाने वाला बाकी सामान भी पैक करना था, मेहमानों को भी देखना था और वो चक्कर घिन्नी बनी हुई थी। अंतरा को साय की तरह आहाना के साथ लगा दिया गया था। जयेश जी और दृशांत यहाँ का काम टेंट वाले को समझाकर होटल की तैयारियां देखने गए थे। यहाँ निशांत की ड्यूटी लगी थी कि सब काम ठीक से करवा ले, साथ में उसके कजन ब्रदर भी थे। दृशांत तो अपनी कार छोड़कर बाइक पर आ गया था, कभी चाबी घुमाकर बाजार की ओर दौड़ता, कभी घर आता तो कभी होटल की दिशा में बाइक दौड़ाता। घर का बड़ा बेटा था तो लगभग सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी और वो कहीं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता, बस इसलिए कभी यहाँ का चक्कर काटता तो कभी वहाँ का। भैया, ये घड़ी तो कमाल लग रही है, पर हमने पहले कभी तो ये आपके पास नहीं देखी, कब खरीदी आपने इसे? शेरवानी पहने तैयार खड़े अक्षय ने जैसे ही आहाना की दी घड़ी पहनने के लिए निकाली, कुत्ते की तरह खुशबू सूंघते हुए अन्वय वहाँ पहुँच गया। हालांकि अक्षय को तैयार करवाने की जिम्मेदारी घर के दामाद मतलब सुमित को सौंपी गई थी, पर घूमते फिरते अन्वय बार बार वहाँ की खैर खबर लेने आ जाता था, जैसे अभी आया था। तुझे जानकर क्या करना है कि कब खरीदी और कब नहीं? अक्षय ने तिरछी नजरों से उसे घूरते हुए तल्ख लहजे में सवाल किया। सुबह उठने के साथ से अन्वय उसके पीछे पड़ा था, बस इसलिए वो खींच उठा था। अन्वय ने उसके बिगड़ते तेवर देखकर बेफिक्री से कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, मुझे भला क्या करना होगा, शादी की शॉपिंग हमने की थी पर ये घड़ी पहले कभी देखी नहीं तो बस यूं ही पूछ लिया, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, यू नो। नो, आई डोंट नो एंड इवन आई डोंट वॉन्ट टू नो एनीथिंग। बस तू अब मेरा पीछा छोड़ दे, तेरी शरारतें इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिजाज बिगड़ा था और रुख पर चिड़के भाव उभरे थे, जिसे देखकर अन्वय ने उसके सीने को हौले से थपथपाते हुए कोमल स्वर में बोला, रिलैक्स भाई, इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं आप? इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। चलिए आप कहते हैं तो अब आपको और परेशान नहीं करता, पर आज आपकी शादी है तो मस्ती तो मैं करूंगा और थोड़ा बहुत आपको टीज भी करूंगा, ये हक है मेरा जिसे कोई छीन नहीं सकता। अन्वय ने शरारत से मुस्कुराते हुए अपनी आंख विंक की और उसकी बात सुनकर अक्षय ने बेबसी व अफसोस से सर हिला दिया। अभी उनकी बात भी खत्म नहीं हुई थी कि दरवाजे को धकेलते हुए फलक ने कमरे में कदम रखा, नजर सीधे अक्षय पर पड़ी और चेहरे के भाव बिगड़ गए। भैया, आज तो आपकी शादी है, आज तो अपने इस जंगल को साफ कर लीजिए। अक्षय के साथ साथ सुमित और अन्वय का ध्यान भी उस पर चला गया। अपने सेट बियर्ड्स के लिए जंगल शब्द सुनकर अक्षय का खराब मूड और खराब हो गया और उसने चिढ़ते हुए जवाब दिया, जंगल पहले ही साफ है, हल्की दाढ़ी रहेगी ही, लुक अच्छा आता है इससे। लुक अच्छा आता है या मर्द हो ये दिखाने के लिए दाढ़ी मूछ रखना आप लड़कों की मजबूरी है? दाढ़ी मूछ से परेशान फलक ने एक लाइन से तीनों को आड़े हाथ लिया था। सुमित, अन्वय और अक्षय तीनों उसकी बात सुनकर झेप गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आजकल का ट्रेंड है, हल्की बियर्ड्स में लुक अच्छा आता है, सफाई सुमित ने पेश की थी और अगले ही पल फलक की घूरती निगाहें उसकी ओर घूम गई। बेचारा सक पकाते हुए बगले झांकने लगा। अन्वय और अक्षय ने कुछ न कहने में ही अपनी भलाई समझी थी। इतने में बाहर से उनका बुलावा आ गया, बारात के निकलने का वक्त हो गया था। कुछ देर बाद सहरा बांधे अक्षय घोड़ी पर सवार था। घराती से बाराती तक सभी सच थच कर तैयार थे।
महिलाएं नहीं जा रही थी, हालांकि फलक और कुछ दो तीन लड़कियां और जा रही थी। बारातियों के लिए सुपर डिलक्स बस बाहर मेन रोड पर खड़ी थी और साथ ही कुछ गाड़ियां भी मौजूद थी, जिनमें सबसे आगे वो अक्षय की कार थी, जो आज बिल्कुल नई दुल्हन जैसे फूलों से सजी तैयार खड़ी थी। आखिर दुल्हन को लेने जो जाने वाली थी। सारे बारातियों संग घरातियों ने घर के बाहर बैंड बाजे और डीजे पर जमकर खुमके शुमके लगाए थे। खूब आतिशबाजियां भी हुई थी और बारात मस्ती में झूमते हुए मेन रोड तक पहुंची, जहां से सब गाड़ियों और बस में सवार होकर कानपुर के लिए रवाना हो गई।